अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे कृष्ण शूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। संन्यास महाबाहु तत्वमीक्षा निवेदन त्याग से ऋषिकेश renunciation and renounced order of life. So this Hindi translation will not be coming for this. They will not understand no other concepts. They have written in the bracket Tyaga, you know, the word word meaning, so that will not give a correct meaning of that. Hey Rashikesh, my Tyagmay Jeevan ka bhi udesh jana chahta hu. तो हम संस्कृत शब्द उपयोग करेंगे, त्याग और संन्यास। तो इन दोनों के अर्थ में जानना चाहता हूँ, ऐसे बोल रहे। तो ये क्या है, भगवान स्वयं उसको, त्याग का अर्थ क्या होता है, संन्यास का क्या अर्थ होता है, इन दोनों को भगवान स्वयं वर्णन करेंगे। इसलिए हम इस श्लोक में उसको के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और यहाँ पर अर्जुन भगवान को ऋषिकेश और केशिनी शूदन करके संबोधित कर रहे हैं। तो ऋषिकेश, अभी अर्जुन का मन जो है इन अलग अलग विषयों के द्वारा बहुत विचलित हो गया है, एजिटेट हो गया है। तो वो शांत करने वाले कौन है, ऋषिकेश। जो सभी के मन को शांत करने वाले हैं वो ऋषिकेश। सो क्यों ऋषिकेश क्यों, क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी होते हैं, मन के स्वामी होते हैं, इसलिए वो क्या शांत कर रहे हैं उनको। अर्जुन को इस जो संन्यास की सिद्धि है उसको वर्णन करके अभी अर्जुन के मन को शांत करने वाले हैं। और उनके मन में जो भी संशय है वो केशी को हत्या रहा है, केशी विशुद्ध भगवान हत्या रहा है, इसलिए उनको जो मन संशय नामक कुछ जो असुर उनके मन में बैठे हैं उनको भी नाश करने वाले भगवान। तो इसलिए ये शब्द, ये नाम से अर्जुन भगवान को संबोधित करते हैं। श्लोक क्रमांक 2। श्री भगवान उवाच, काम्यानं कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। ब भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोगों में संन्यास कहते हैं। और समस्त कर्म फल कर्म त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। सो काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। जो बहुत ही विद्वान लोग हैं, कवि लोग, उन्होंने क्या कहा है, काम्य कर्म को त्याग करना। काम्य कर्म, काम्यानां कर्मणां न्यासं, काम्यानां कर्मणां, काम्य कर्म को, इसका अर्थ है ऐसे नियत कर्म को बौद्धिक इच्छा से जो करते हैं हम लोग, उनको त्यागना क्या है, संन्यास कहते हैं। जिसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग सभी कर्मों को त्याग देते हैं, लेकिन जो काम्य कर्म है उनको त्याग देते हैं, उसको संन्यास कहते हैं। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षण, कर्म फलों को त्याग देना क्या है, उसको त्याग कहते हैं। तो ये परिभाषा है संन्यास और त्याग का। जो ऐसे कर्मकांड में जो भी वर्णन, कर्मकांड विभाग में जो भी वर्णन किया गया वेदों में क्या है, वो संन्यास है। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक व्यक्ति नियत कर्म त्याग रहे, लेकिन कर्मकांड को त्याग रहे, काम में कर्म कहते हैं। कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष भोग ऐश्वर्य प्रतिम प्रति। कौन सा श्लोक, कौन सा अध्याय का, कौन सा श्लोक? तो ऐसे वो काम्य कर्म है, कर्म कारण क्या है, वो काम्य कर्म है, इसको त्याग देना संन्यास है। और सर्व कर्म फल त्याग, सर्व कर्म फल त्याग, सभी कर्मों का उनको फलों को त्याग देना क्या है, त्याग कहते हैं। और यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, कवयो विदुः विचक्षणः। तो भगवान दूसरों का उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर, वो अपना मत प्रस्तुत नहीं कर रहे, दूसरों का उल्लेख कर रहे हैं, विशेष करके जो बहुत ही विद्वान लोग हैं, सो जो वेद शास्त्रों के वेद शास्त्रों को जानते हैं, मर्म को जानते हैं, उनको उल्लेख कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि भगवान इस भगवद्गीता में वेदांत का या अन्य जो बहुत ही विद्वान लोग हैं उनको उल्लेख करते हैं, इसलिए मायावादी लोग सोचते हैं कि वो सर्वोच्च अधिकारी नहीं है, वो भी एक अधिकारी है। ठीक है, भगवान कृष्ण भगवद्गीता ने बताया है इसलिए वो बहुत महान है, लेकिन उनको सर्वोच्च अधिकारी नहीं मानते ज्ञान के ऊपर। तो हम उसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि ये भगवद्गीता का क्या है, उपदेश है। सो क्या है, काम्य कर्म को त्याग करना वो संन्यास है, लेकिन जो कर्म सन्यासी होते हैं सभी कर्मों को त्याग देते हैं। लेकिन भगवान सन्यास का क्या अर्थ बता रहे हैं, सिर्फ काम्य कर्म को त्याग करना। जो मायावादी सन्यासी होते हैं या अन्य बहुत सारे जो सांख्य दर्शन का पालन करने वाले वगैरह, वो लोग क्या कर देते हैं, पूरा सभी प्रकार के कर्मों को त्याग देते हैं, उनको कर्म सन्यासी कहते हैं। अवशील प्रपद ये काम कर्म के लिए उदाहरण दे रहे हैं। वो कर्म कांड वैदिक सेक्रीफाइस परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस है ना, तो वो कर्म को त्याग करना। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि उन कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए जो ऊंचा आध्यात्मिक ज्ञान को हमें प्रदान करते हैं, उनको त्यागना नहीं चाहिए। वो अगले श्लोकों में बताया जाएगा। अगले श्लोकों में कहाँ पर, पंचम श्लोक में बताते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च यज्ञो दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। जो यज्ञ दान तप कर्म है वो कभी त्यागना नहीं चाहिए, वो पावनानि मनीषिणाम, जो प्रगतिशील है महान व्यक्ति है उनको भी वो शुद्ध करते हैं, ऐसे कहते हैं। ठीक है, पंचम श्लोक में तो ये श्लोक क्रमांक 3, श्लोक क्रमांक 3, त्याज्यं दोषावदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। कुछ विद्वान दोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो त्याज्यम दोषवद इत्येके कर्म प्राहुर मनीषिणः। कुछ लोग कहते हैं कि त्याज्यम दोषवद इत्येके कर्म प्राहुर मनीषिणः, प्राय सभी जो कर्म है नियत कर्म है उनको दोषवद है करके, दोष से युक्त है करके क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग कहते हैं, ये विशेष करके कर्म संन्यासी लोग, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। और कुछ लोग कहते हैं कि जो यज्ञ दान तपक है वो कभी त्यागना नहीं चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो पिछले श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं, वो यज्ञ दान तप कर्म जो ऊंचा ज्ञान को हमें प्राप्त कराता है तो उसको हमें त्यागना नहीं चाहिए, ऐसे कहते हैं। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, कुछ भी कोई यज्ञ दान तप को त्याग नहीं सकते, जैसे कर्मवादी होते हैं, जैमिनी और उनके अनुयायी जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि कभी हमें त्यागना नहीं चाहिए। और पहले के लिए जो त्याज्यम दोषवद सभी कर्मों को दोष पूर्ण करके वो त्यागना चाहिए उसके लिए कर्म संन्यासी है उदाहरण, और बौद्ध धर्म वाले भी है, वो लोग भी सभी त्याग देते हैं निर्वाण करके सभी कार्यों को, है ना। तो इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या उदाहरण दे रहे हैं, पहले वो कहते हैं कि वैदिक शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे कार्य है जिसके ऊपर बहुत विवाद होते हैं। पहले जमाने में ऐसे बहुत वाद विवाद होता था कर्म संन्यासी कर्मवादी इनके बीच में, अभी ये सब वाद विवाद नहीं होता है। अभी जस्ट लेट क्या करना, एवरीथिंग इज ओके। पहले जमाने में बहुत होता था इसके ऊपर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सही है वो सही है, तो बहुत ऐसे वाद विवाद होता था। जो वेदों में जो पंडित होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, वो लोग हमेशा इसके ऊपर वाद विवाद करते रहते थे। अभी यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, तो ऐसे यज्ञ जिसमें पशु की बलि चढ़ाया जाता है, पशुवध होता है, तो आप जानते हैं ना, ये जब बौद्ध भगवान बुद्ध आए उस समय इसके बारे में बहुत वाद विवाद हुआ है ना। तो वेदों के अनुयायी वो लोग क्या कर रहे थे, वो वास्तव में पथभ्रष्ट हो गए थे, उन्होंने त्याग, वो क्या कर रहे थे, यज्ञ करके करके पशुओं का हत्या कर रहे थे। तो पशुओं को हत्या करने के लिए ही यज्ञ कर रहे, उनको मांस भक्षण करने की इच्छा है, लेकिन उसको यज्ञ के नाम में या वेदों के नाम पर करना। तो इसको बंद करने के लिए क्या किया है, भगवान बुलाए। लेकिन वो उस समय बहुत वाद विवाद हुआ कि हम आप कैसे कर सकते हैं है कि इसको हम लोग त्यागना चाहिए करके। हालांकि आधुनिक बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं बहुत सारा ऐसे मांस खाते हैं, लेकिन मूलतः जो बुद्ध है वो इसको बंद करने के लिए आए थे, पशुवध जो यज्ञ होते हैं। तो आज है ना वो दलाई लामा, वही हर रोज बहुत सारा खेजी क्या है, बहुत ही मात्रा में उसको मांस चाहिए। और आप देखते हैं ना वो बहुत धर्म वाले बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, बहुत सारा मांस खाते हैं। कोई हमें बता रहे थे एक बार, आप लोग क्या ऐसे ऐसे प्रचार करते हो, मांस भक्षण करना नहीं, ऐसे हिंदू धर्म का कैसे रक्षा होगा, आपको भी बहुत अच्छा मांस जैसे बौद्ध धर्म वाले खाते हैं, आपको भी ज़्यादा मांस करके रक्षा करना चाहिए ऐसे हिंदुत्व वाले। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म को रक्षा करने से अपने आप उसका रक्षा कैसे होता है, उसको पालन करने से, ऐसा नहीं मांस भक्षण करने से। वो ये हिंदुत्ववादी लोग उसको ही विवेकानंद से लिया वो दर्शन। विवेकानंद ने बोला मांस भक्षण करो, बहुत शक्तिशाली बनाओ ऐसे बोले। ठीक है, तो ये सब के बारे में बहुत सारा वाद विवाद है। लेकिन हाँ, वेद शास्त्रों में जो पशु का हत्या किया जाता था उसको वास्तव में हत्या नहीं माना जाता था या हिंसा नहीं माना जाता था। क्यों? क्योंकि पशु को नया शरीर मिलता था या कभी कभी उसको मनुष्य शरीर भी प्राप्त हो जाता था, इसलिए उसका प्रगति है, उसको हत्या नहीं कर रहे। लेकिन उस समय जब बौद्धवाद फैल गया, उस समय लोग वेदों को भी वो लोग क्या कर रहे थे, गलत फायदा उठा रहे थे, और इनको नकार, वेदों के जो अनुष्ठान है उनको नकारना भी सही नहीं है जैसे बौद्धवाद करते। तो श्लोक क्रमांक 4, निश्चय शुणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दुल पुरुष व्याघ्र, समझ में आता है सबको हिंदी तो अच्छा है कि पुरुष व्याघ्र लिख देते हैं, सभी लिटरल करने की जरूरत नहीं। तो पहले श्लोक में ही लिटरल करके बदल गए। सो पुरुष व्याघ्र, शास्त्रों में त्याग के तीन तरह का बताया गया है। तो पहले अभी भगवान क्या बताए, दो श्लोकों में, इसके तीसरे और दूसरे और तीसरे श्लोक में अन्यों का जो मत है उसको प्रस्थापित बताया उन्होंने, अभी अपना भगवान अपना मत बता रहे। तो हमारे लिए क्या है, भगवान का जो मत है वो सर्वोच्च है। वही सर्वोच्च है क्योंकि सभी वेद, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे, अंत में सभी वेद क्या है, भगवान से आते हैं, इसलिए भगवान का जो मत है वो सर्वोच्च है। तो वही सभी ज्ञान के ऊपर वही अधिकारी है, वो हमें हमेशा स्वीकार करना चाहिए। और ऐसे वेदों के अनुयायियों के बीच में जब भी वाद जो वाद विवाद होता है, जब हम भगवान के इस मत को साबित करेंगे तो इसको बढ़कर और कोई क्या तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो ये सर्वोच्च निर्णय है और अर्जुन को यहाँ पर भरत सप्तम और पुरुष व्याघ्र करके संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तीन प्रकार के संन्यास होते त्याग होते हैं, तीन प्रकार के त्याग होते हैं, उनका बाद में भगवान वर्णन करेंगे। श्लोक क्रमांक 5, यज्ञदान तप कर्माणा त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानस्तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। पावनानी मनीषिना महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं, वो भी सही ठीक है। पावनानी मनीषिना मतलब मनुष्य समाज को शुद्ध करते हैं, वो भी दोनों अर्थ होते हैं इसका। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यज्ञ के लिए विवाह यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं। तो जब प्रभुपाद आरंभ में जब वो प्रचार करना शुरू किए पाश्चात्य देश में, तो हालांकि वो सन्यासी थे, पाश्चात्य देश में तो कोई वैदिक विवाह यज्ञ जो है या विवाह संस्कार तो वो नहीं था, उसको स्थापित करना चाहते थे। वो विवाह संस्कार को विवाह संस्कार को स्थापित करना चाहते थे, इसलिए वो क्या किया, उन्होंने अपने शिष्यों को विवाह में भाग लिया या स्वयं वो क्या किए, वो दोनों का विवाह किया उन्होंने। पहला विवाह जानते हैं ना, मुकुंद और जानक, मुकुंद महाराज अभी बाद में संन्यास लिए, तो उनका पहला विवाह था इस्कॉन में। तो जब प्रभुपाद जी ऐसे विवाह, क्योंकि वो विवाह का ये संस्कार है यज्ञ है, उसको स्थापित करना चाहते थे समाज में, और उस समय अमेरिका में तो कोई गृहस्थ नहीं थे, गृहस्थ ब्राह्मण नहीं थे ये यज्ञ करने के लिए, तो इसलिए उनको ही करना पड़ा। हालांकि सन्यासी को ये बताया जाता है कि ऐसे सन्यासी का एक नियम है कि उनको और सन्यासी बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो विवाह करके लोगों को और इंद्रग्रस्त बना के इंद्र तृप्ति में लगाना चाहिए। तो वो सन्यासी के लिए नियम है, सन्यासी मीन्स ही शुड मेक मोर सन्यासी, वही सन्यासी का अर्थ होता है। अंत में हो गए ना। कहने का अर्थ है यहाँ पर कि लोकना सन्यासी को विवाह में कभी जाना चाहिए, नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी और सन्यासियों को विवाह में न कभी मैरिज में नहीं आना, मैरिज अटेंड नहीं करना चाहिए। तो ये सब नियम होते हैं सन्यासी के लिए। तो इसके लिए जो ये भारत में और विशेष करके उनके गुरु भाई जो है उनको निंदा किया, ये सन्यासी है और विवाह में भाग लेता है, ऐसे उनको निंदा किया। लेकिन आरंभ में कौन करेंगे उसको, तो सभी लोग तो सन्यास नहीं लेंगे, कुछ लोग तो विवाह करेंगे ही, तो इसलिए वो विवाह यज्ञ को संपन्न ये क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए क्या है, इस जगत में विवाह जरूरत होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए, है ना। ब्रह्मचारी डर जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं, प्रयास करना चाहिए, है ना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए विवाह का जरूरत होता है, इसलिए विवाह यज्ञ करना था उनको, तो विवाह यज्ञ किया उन्होंने, लेकिन ये लोग निंदा किया। तो लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य समाज के लिए योग्य है उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। पावनानी मनीषी, ये मनुष्य समाज के लिए योग्य है ऐसे विवाह यज्ञ या विवाह संस्कार को स्थापित करना। और दान तप, दान भी जो हृदय को शुद्धि करना वाला है उसको करना चाहिए, और तपस्या भी। प्रभुपाद जी इसको उल्लेख करते थे, सन्यासी को भी जो इस्कॉन में जो सन्यासी है वो भी सुबह उठना चाहिए, तब यही श्लोक उल्लेख किया। भरत महाराज, भरत महाराज तो उस समय भी प्रभुपाद जी पंचम स्कंध में भरत महाराज के बारे में वर्णन करते हुए इसको उल्लेख करते हैं, यज्ञ दान तप कर्म अभी ध्यान में नहीं चाहिए, क्योंकि भरत महाराज क्या किया, हालांकि भाव भक्ति के स्तर पर थे वो, लेकिन उन्होंने त्याग दिया अपने जो यज्ञ दान तपस्या है, इसलिए उनका तप खत्म हो गया। पावनानी मनीषिणा, तो ये उसका आता है। श्लोक क्रमांक 6, एतानपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यादीति मार्गतः निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार के आसक्ति तथा फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रताप पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान यहाँ पर उनके सर्वोच्च मत को करना चाहिए। तो जो कुछ भी कृष्ण भावना मत, हमें कृष्ण भावना भावित होने के लिए सहयोग करता है, उसको प्रेरित करना चाहिए। या दूसरे शब्दों में, जो जो हमें भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करने के लिए सहायता करता है, वही धर्म है। धर्म का परिभाषा यहाँ पर श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम से उल्लेख कर रहे हैं। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदौक्षजे अहेतु की अप्रतियता यात्मा सुप्रसीदति। तो सभी जीवों के लिए वो सर्वोच्च धर्म है जो भगवान कृष्ण के भक्ति तक लेकर जाता है, उनको प्रेम करने के लिए सहयोग करता है, वही धर्म। धर्म से हमें क्या करना चाहिए, आप जो भी धर्म को पालन कीजिए, ईसाई धर्म का पालन कीजिए या मुसलमान धर्म का पालन कीजिए या हिंदू, कुछ भी बोले आप, लेकिन क्या करना चाहिए, उसके धर्म भगवान के प्रति वो प्रेम जागृत करना चाहिए, तो उसको सर्वोच्च धर्म कहते हैं। तो वो सभी चीजों को स्वीकार करना चाहिए। कोई भी यज्ञ दान तप है जो भगवान के भक्ति के लिए अनुकूल कारक है, उसको स्वीकार करना चाहिए, वही सर्वोच्च क्राइटेरिया, धर्म का नियम नियम है। और तात्पर्य के अंत में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ दान या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक। आप वैश्य का कर्म कीजिए, शूद्र का कर्म कीजिए, ब्राह्मण का कर्म कीजिए, क्षत्रिय का कर्म कीजिए, जो भी आपको भक्ति में लाभदायक है, अनुकूल कारक है, उसको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ऐसे भगवान यहाँ पर यज्ञ दान तप कर्म, तो पिछले श्लोक तात्पर्य में, पिछले अध्याय में भी दान के बारे में आया था ना, तो हम ओम तत्सत को उच्चारण करके दान देना चाहिए। दान सही व्यक्ति, योग्य व्यक्ति को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को वगैरह, ऐसे तपस्या भी। और यहाँ पर भगवान बोल रहे निश्चितम मतम उत्तमम, मेरे जो मत है वो सर्वोच्च है। चौथे श्लोक में हम लोग चर्चा किए भगवान के मत क्या है, सर्वोच्च है। श्लोक क्रमांक 7, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामस परिकीर्णितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो उसे ऐसे त्याग को तमसी कहा गया। तो भगवान चौथे श्लोक में, कौन सा श्लोक है वो बताते हैं ना, तीन प्रकार के त्याग होते हैं। चौथे श्लोक में उन्होंने बताया तीन प्रकार के त्याग होते हैं, तो वो मैं बताऊंगा ऐसे बोलते हैं। अभी इस श्लोक से भगवान बता रहे हैं, तो सातवें आठवें नवें श्लोक में तीन प्रकार के त्याग को बताते हैं। तो मोह से जिसको त्याग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, त्याग, वो तमोगुण में त्याग होता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, एक फिर से सन्यासी का उदाहरण दे रहे हैं। सन्यासी के लिए अपने आप को क्या करना चाहिए, रसोई नहीं बनाना चाहिए, कभी अग्नि नहीं जलाते हैं सन्यासी अपने आप के लिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान को भी अर्पण भोग करने के लिए क्या करना चाहिए, वो अग्नि नहीं जलाएंगे, ऐसा नहीं है। जो वैष्णव सन्यासी होते हैं भगवान को भोग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो अग्नि जला सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी आरंभ में जब पार्षद देश में गए थे, वो स्वयं पकाते थे, भगवान को अर्पण कर देते थे, और प्रचार के लिए भी दूसरों को प्रसाद वितरण के लिए वो पकाते थे अपने आप, और भक्तों को सिखाने के लिए। तो ये भक्ति में सब ठीक है, ऐसा सोचकर ये सब क्या है, माया है करके उसको त्याग दिया तो क्या हो जाएगा वो, तो तमोगुण में वो है। फिर से प्रभुपाद इस श्लोक में जैसे उन्होंने पंचम श्लोक के तात्पर्य में किए थे, उनको जो जब निंदा किया गया था उसको उत्तर दे रहे हैं, रिस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिसिज्म। और ठीक है, श्लोक क्रमांक 8, दुःखम् इत्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागं फलेन भवेत्। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसे करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। पिछले श्लोक में तमोगुण का त्याग में मोह के कारण वो त्याग लेता है, यहाँ पर वो नियत कर्म करना बहुत ही कष्टदायक करके क्या कर देता है, उनको त्याग देता है। घर में पत्नी के साथ झगड़ा हो गया, ये पारिवारिक जीवन बहुत कष्ट है, चलो अभी वो पत्नी के साथ झगड़ा करने के कारण थोड़ा समय के लिए क्या होता है, हृदय में ऐसे अनाशक्ति का भावना जागृत हो जाता है और घर से भाग जाते हैं लोग। ऐसे बहुत वाले लोग करते हैं, कहीं वृंदावन गए, मायापुर गए, या ऐसे कोई तीर्थ ऋषिकेश हरिद्वार गए, चले जाते हैं। लेकिन असली में वो त्याग या वैराग्य नहीं आया है, सिर्फ क्लेश के कारण वो पारिवारिक जीवन में क्लेश के कारण वो वहाँ चले गए, और वहाँ पर भी कुछ ऐसे बंदरियों को पकड़ लेते हैं। तो ऐसे होता है, बंगाल में भी ऐसे हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे घर से भागकर बाबा जी वेश धारण किए, लेकिन वहाँ पर एक डजन फिर सेवादासियों को अपनी सेवा में लगाए, फिर उसके कारण बहुत सारे एक संतति का उत्पन्न हो गया, इसको भोष्टम संतति कहते हैं,
भोष्टम।
बोस्टम एक एक जाति का ही सृष्टि हो गया। सो ऐसे तथाकथित विरक्त बाबा जी संप्रदाय के फल है। वर्ण संकर हो गए। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में क्या उदाहरण दे रहे, धन क्या करना, धन कमाना बहुत मुश्किल है ना, तो ये बहुत क्लेशदायक है, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ, ऐसे वो जो सोचते हैं। जो यहाँ पर प्रॉपर बोलते हैं धन का, तो इसलिए, और दूसरा है सुबह उठने का, ऐसा सोच के मेरा क्या है, अभी उठूंगा नहीं मैं सुबह क्योंकि मेरा हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, या ना मुझे तकलीफ होगा इसके कारण, ऐसे जो उठते नहीं हैं वो क्या है, उनका जो त्याग है वैराग्य है वो रजोगुण में है ऐसे। और उसका फल सकृत्वा राजसं त्यागम नैवम त्याग फलम लभेत, भगवान बोल रहे नैवम त्याग फलम लभेत, त्याग का फल जो है वो प्राप्त नहीं होता, ऐसे कह रहे है ना, ऐसे त्याग करके भी क्या फायदा है ना, आपको फल नहीं मिलता है। श्लोक क्रमांक 9, कार्यमितेव यत्कर्मा नियतं क्रियते अर्जुना संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विकी मता. हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्यागता है, त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है. यहाँ पर भगवान दो उदाहरण दे रहे हैं, मतलब दो लक्षण बता रहे हैं सत्वगुण में त्याग का. पहला लक्षण है कि वो लोग वो नियत कर्म करके, नियतम कार्य मित्तेव यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, करणीय मानकर वो लोग उसको करते हैं, और संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा, संग संगम त्यक्त्वा का दो अर्थ होते हैं. फिर एक है भौतिकवादियों के संग में नहीं करते हैं वो, और दूसरा है वो कर्म फल से आसक्त है, आसक्ति है, वो त्याग देते हैं. उसको क्या कहते हैं? त्याग. सत्वगुण में त्याग का अर्थ होता है. श्रील प्रभुपाद फिर से उदाहरण दे रहे हैं. एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में क्या है, फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन फैक्ट्री में काम करना क्या होता है, तो वो आजकल तो ऐसा नहीं होता है कि फैक्ट्री में काम करना संगम त्यक्त्वा तो नहीं होता है. इसके बारे में और हम लोग आगे चर्चा करेंगे. इसलिए प्रभुपाद जी क्या किया, उन्होंने जो फार्म कम्युनिटी है उसके बारे में बताया. सो उसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे. श्लोक क्रमांक 10. न द्वेष्टा कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधा विचिन्न संशयः. तो सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रहता. तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, अकुशलम कर्म, जो अकुशलम कर्म कौन से होते हैं, सकाम कर्म सभी क्या है, अकुशलम कर्म है, उसको द्वेष नहीं करते हैं. कुशले नानुसज्जते, और जो शुभ कर्म है उसमें वो लिप्त नहीं हो जाते हैं. त्यागी सत्व समाविष्टो, हमेशा वो क्या करते हैं, सत्व समाविष्ट मतलब सत्व में या सत्व गुण में वो हमेशा लगे रहते हैं, उनका त्याग क्या है. और मेधावी, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, छिन्न संशय, उनके कर्म के बारे में उनको कोई संशय नहीं रहता है. तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, कृष्ण भावनावाहित व्यक्ति को या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है न अपने शरीर को कष्ट देने वाले किसी बात से, वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है. ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्म को प्राप्त और सर्वाधिक